श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस स्वामी प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एन गोरामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 6 नारद तथा व्यास देव का संवाद। श्लोक संख्या 19। दिदृक्षुः तत् अहम् भूयः प्रणिधाय मनः हृदि वीक्षमाणः अपि न अपश्यम् अवितृप्त इव आतुरः। दिदृक्षोस्तद् अहम् भूयः प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इव आतुरः। दिदृक्षोस्तद् अहम् भूयः प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुरः दिदृक्षोस्तन् अहम् भूयाम् प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुरः। बोलिए दिदृक्षुः देखने को इच्छुक तत् वह अहम् मैं भूयः फिर प्रणिधाय मन को एकाग्र करके मनः मन हृदि हृदय में वीक्षमाणः देखने के लिए प्रतीक्षारत अपि होते हुए न कभी नहीं अपश्यम उन्हें देखा अवितृप्त बिना संतुष्ट हुए इव सदृश आतुरः संतप्त। अनुवाद, मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है। ये पहला वाक्य है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप इस प्रकार के आसन पर बैठो, इस प्रकार से आप नासिका के अग्रभाग को देखो, सिर ग्रीवा और कंधे को एक सिर में रखो, जैसे बताया ना गीता में भगवान ने बताया है कि ध्यान करने की विधि क्या है। सुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिरम आसनम आत्मनः, कि एकांत स्थान हो, पवित्र स्थान हो
और आसन भी बिल्कुल स्थिर हो। ना तो क्षितम ना तो नीचम, चला जाने को सोत्रम, ज्यादा ऊंचा भी ना हो आसन, ज्यादा नीचा भी ना हो।
योगम आत्मशुद्धि, फिर उस आसन पर बैठ करके और योग का अभ्यास करो। फिर समय समम काय सिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा को समान करके धारण चलम स्थिर रहा। संप्रेक्ष नासिका अग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग को देखना, दिशा चांद अवन अनवलोकन, और दूसरी दिशाओं को ना देखना। और ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं ध्यान करने की, ये सब नियम है। लेकिन तो भी ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान का ध्यान कर ही पाएगा। इसके इन सब चीजों के बावजूद भी अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप ध्यान नहीं कर सकते, है ना। भगवान को कोई विवश नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं इसलिए भगवान मुझे दर्शन देंगे, या मैं इस तरह से आसन पर बैठा हूं वैसे आसन पर बैठा हूं, है ना। जैसे कि आठवें अध्याय में भी भगवान के सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदि निरुद्ध चा, जैसे इसमें कहा है प्रणिधाय मनोहृदि, मन को हृदय में एकाग्र करके, और यहां भी सर्व द्वाराणि संयम में सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके और मन को हृदय में रोक करके। मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, अपने प्राण को सिर में स्थापित करके, है ना। आसो योग धारणा, योग धारणा में स्थिर होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बावजूद भी भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दर्शन दें, लेकिन अनंत भक्ति के द्वारा भगवान बस में होते। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत नित्य सहा, अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है नित्य, तस्याहम सुलभा उसके लिए मैं सुलभ हूं, नित्य युक्तस्य योगिना उसके लिए भगवान हमेशा सुलभ है, जब चाहे तब भगवान का दर्शन कर सकता है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों, तो अपने भक्तों के लिए वो दुर्लभ नहीं है, अदुर्लभ है। लेकिन बाकी जितने विधि विधान हैं, कोई व्यक्ति केवल विधि विधानों का पालन करे, विधि विधानों का पालन करे भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, केवल विधि विधानों का ही पालन करता है, तो उसके लिए जो है भगवान विवश नहीं है कि वह दर्शन दें। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है। तो यहां पर हम जो सुन रहे हैं कई दिनों से, एक ही कथा है, एक ही घटना है कि नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे और उनकी माता का देहांत हो गया, वो बालक 5 साल का था, उसका और कोई था नहीं इस दुनिया में। जब माता का देहांत हो गया तो उसने माना कि अभी भगवान की कृपा है, तो पूरी तरह से भगवान में आश्रित होकर के ये बालक कहाँ गया, उत्तर दिशा की ओर चला, और उत्तर दिशा की ओर चलते चलते बहुत दीहड़ जंगल भी मिले, बहुत भयानक स्थान भी मिले, और बहुत से नगर हैं, गांव हैं, भगवान की हर प्रकार की सृष्टि उसने देखी, और फिर एक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे वो बालक बैठ करके और जो ऋषियों ने विधि बताई थी ध्यान की, उस विधि के अनुसार वो ध्यान करने लगा। और हुआ क्या, शने शने इसमें बताया गया है कि धीरे धीरे भगवान हृदय आसीन में शन्य धरी, शन्य माने धीरे धीरे भगवान हृदय में मेरे आ गए। तो भगवान आए तो अपनी इच्छा से आए, भगवान जो है अपनी हेतु की कृपा से ही उन्होंने दर्शन दिया। और हुआ क्या, आनंद संप्लवे लीनो, ये बालक जो है आनंद के सागर में डूब गया। और फिर क्या हुआ कि अपश्यन सहसोत्तर थे, अचानक क्या हुआ कि भगवान का रूप अंतर्हित हो गया, तो फिर व्यक्लब व्या दुर्मनाय, तो बहुत व्याकुल हो गया मैं। और इसमें बताया गया है कि निद्रिक्षुष, अब फिर से देखने के लिए मैंने क्या किया, फिर से प्रयास किया उसी प्रकार से, कैसे बैठना चाहिए, फिर से विचार किया कि ऋषियों ने जैसे बताई थी विधि उस प्रकार से बैठना है, या प्राणायाम करना है, नासिका के अग्रभाग को देखना है, आंखों को आधा खुला और आधा बंद रखना है, इस सब चीजें की। लेकिन तो भी क्या हुआ, भगवान ने भगवान दर्शन नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, एक बड़ा रहस्य है कि भगवान जो है किसी भी विधि के जो है बस में नहीं है, एकमात्र भक्ति, शुद्ध भक्ति है ना, भक्तिया हम एक आग्रह है। तो भगवान जो है केवल एक भक्ति के द्वारा ही ग्रहण किए जा सकते हैं, बस में किए जा सकते हैं, और कोई विधि नहीं है। तो उस बालक ने सोचा था कि जो विधि है उस विधि के अनुसार मैं भगवान को पकड़ सकता हूं, लेकिन नहीं, यांत्रिक विधि नहीं, ये संपूर्णतया भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावशी उपस्थित होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं कि ध्यान करो अपनी कल्पना से, अपनी कल्पना के अनुसार आप भगवान के किसी भी रूप में ध्यान करो। तो यहां पर जो बात समझाई गई है वो क्या है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, कि अपनी कल्पना से आप जो है ध्यान करो, जैसे चाहो कल्पना कर लो,
जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कल्पना के अनुसार भगवान का ध्यान करो। तो कल्पना तो जो है फिर हमारे बस में है, हम जैसी कल्पना करना चाहें वैसी कल्पना कर सकते हैं, जब चाहें तब कल्पना कर सकते हैं भगवान। लेकिन यहां पर जो भगवान का रूप उस बालक को दिखाई दिया है वो कैसा था, मनाकांतम सुचापहम, जितना भी शोक है वो सब दूर हो रहा था भगवान के उस रूप से, है आनंद समुद्र में। तो अपनी कल्पना से अगर आप भगवान के रूप की अगर आप कल्पना करते हैं तो वो ऐसा रूप नहीं होगा जैसे आपके सब शोक दूर हो जाएं। जो भगवान का असली रूप है ना, जब भगवान प्रकट करते हैं तो वो होता है जिससे आपके सब शोक दूर होते हैं। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतु की कृपा वशी उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कार्य करो। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहा करते थे कि भगवान को देखने का प्रयास ना करो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो तो भगवान आपको देखेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान को देखने की इच्छा ना करो, भगवान को देखने की आपको इच्छा है लेकिन आप कितना भी प्रयास करेंगे आप भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन जब भगवान आपको देखने की इच्छा करेंगे तो तुरंत भगवान आपको अपने पास बुला सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, है ना, आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, आप उनके पास भी नहीं जा सकते हैं और ना वो आप उनको बुला सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर वो आपको देखना चाहते हैं तो जब चाहें तो आपके घर में आ सकते हैं या अपने ऑफिस में वो बुला सकते हैं, उनके लिए दोनों बातें सुन लो। वो आपके घर में भी आ सकते हैं तुरंत और अपने घर में भी वो बुला सकते हैं आपको तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी हो कहीं से भी वो किसी को बुला सकते हैं या किसी के पास जा सकते हैं प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से भगवान किसी भी भक्त के पास आ सकते हैं, किसी भक्त को अपने पास बुला सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यह है कि उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से बांधे जा सकते हैं। वे ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही देखते हैं। तो कोई भी भक्ति के दावा नहीं कर सकता कि नहीं मैं तो भक्त हूं भगवान का इसलिए मैं अपनी मर्जी से जब चाहूं तब भगवान को देखूं, नहीं। इसलिए भक्त विरह का अनुभव करते। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक में बताया गया है वो राधा रानी का ही भाव है। अंतिम श्लोक आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो दुआ। जब राधा रानी को भी वो जो है विरह प्रदान करते हैं, राधा रानी की भी इच्छा के अनुसार अगर भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो कौन कह सकता है कि नहीं नहीं मेरी इच्छा के अनुसार भगवान दर्शन देंगे। राधा रानी को भी जो है अगर भगवान जब चाहें तो छोड़ सकते हैं तो अदर्शनान मर्महताम करो तो वह वो मुझे मर्माहत करें दर्शन न देकर के, लेकिन मत प्राणनाथ अस्तु सैव नाथ, वही मेरे प्राणनाथ हैं और कोई दूसरा नहीं। अनन्य अनन्य भक्ति यही है। फिर भी भगवान राधा रानी के बस में है लेकिन फिर भी हमेशा नहीं है, भगवान राधा रानी के भी बस में हमेशा नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र भी हैं। और वो कभी अगर त्याग देते हैं राधा रानी को तो वो त्याग सकते हैं। तो इस तरह से ये बात भी निश्चित है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है ना, कोई उनको जो है दावा नहीं कर सकता कि मैं जो है उनको देख सकता हूं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है हमें ये विधि दी, क्या भगवान के विरह का अनुभव करने की। ये श्रेष्ठ आराधना है, चैतन्य महाप्रभु ने जो भगवान की आराधना की है विरह भाव में, तो श्रेष्ठ आराधना है। और प्रभुपाद जी भी यही कहा करते थे, क्या विरह का अनुभव करो भगवान के। कोई व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, मंदिर में भगवान का दर्शन किया, हाँ, या मुझे सपने में भगवान का दर्शन हुआ, कोई खुश होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भक्ति नहीं है, ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है कि हम खुश होते हैं। जैसे कि नारद जी ने भगवान का दर्शन किया तो क्या वो खुश हुए हैं? नहीं, दुखी हुए, दुखी हैं। जैसे कि कोई निर्धन व्यक्ति उसको बहुत धन मिल जाए बहुत प्रसन्न होता है, और जैसे ही वो चोरी हो जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, तो दुखी है। फिर जो लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं हमको तो भगवान के दर्शन हो गए, हमको तो भगवान के दर्शन हुए, उनकी भक्ति कैसी है? ये भक्ति का कोई ऊंचा स्तर नहीं, ऊंचा स्तर नहीं है। तो विरह का अनुभव करना है, ये जो है भक्ति के ऊंचा स्तर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, युगायितम ने मेरे सेवन चक्षुषा प्रावृसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। अगर किसी को भगवान का दर्शन हुआ सचमुच, तो उसको फिर जो है सब जगत सूना लगना चाहिए, तृण के समान। ये पूरा जगत जो है तिनके के समान है, कूड़ा कचड़ा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये मतलब ये है भगवान का दर्शन। इसमें जो है जो बताया गया है, दिदृक्षु तत् अहम भूयः। दिदृक्षु का मतलब है कि दर्शन की इच्छा से मैंने पुनः प्रणिधाय मनोहृदि, मन को हृदय में स्थिर करके वीक्षमाणोपि नापश्यम। वीक्षमाण का मतलब मैं देखना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं लेकिन तो भी नहीं देख रहा हूं। वीक्षमाण का मतलब है देख, मैं देख रहा हूं यानी ढूंढ रहा हूं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह सब जगह भगवान को ढूंढ रहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, इसका यह भी मतलब है। जैसे गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण को हर जगह, है कि नहीं? तो भगवान को सर्वत्र देखने का मतलब यह भी है कि वो भगवान को सब जगह ढूंढ रहा है कि भगवान कहां है। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। भगवान को सब जगह देखने का मतलब भगवान को सब जगह ढूंढना। जैसे गोपियां वृक्षों से लताओं से पूछती हैं कि तुमने कृष्ण को देखा, कृष्ण कहाँ है। और जो सद्गुरु स्वामी अष्टकम में हम लोग गाते हैं वो भी क्या गाते हैं, हे नंद सोनो को कहा कि हे नंद पुत्र तुम कहा हो, श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी बनने को कहा। कि अब गोवर्धन के कल्प वृक्ष नीचे हो या कालिंदी बनने या कालिंदी के तट पर आप स्थित हो, कहां पर हो। घोषंता विधि सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविहवलो, खेत से महाविहवल है। ये जो छह गोस्वामी है ये खेत में महाविहवल। तो ये भगवान की आराधना ये है जो कवि कर्णपूर ने श्लोक लिखा है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रज की वधुओं ने जिस प्रकार की रमणी उपासना की पद्धति कल्पिता यानी बनाई है वो रमणी है। चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। भगवान की उपासना की जो श्रेष्ठ विधि है, आनंददायक विधि है, वो क्या है? क्या विधि है? भक्ति योग में भी कौन सी विधि रमणीय है, आनंददायक है? विरह की, भगवान की विरह का अनुभव करना है ना। ब्रजवधु वर्गीय, ब्रजवधु ने भगवान के विरह में जो आराधना की भगवान की, वो रमणीय है, वो श्रेष्ठ है। इस तरह से भगवान ज्यादा निकट हैं भक्त के, भगवान के ज्यादा निकट हैं। तो वीक्षमाण का मतलब यह भी है कि जो व्यक्ति ढूंढ रहा है, जैसे परीक्षित, परीक्षित महाराज जो है हर व्यक्ति के चेहरे को देखते थे। गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो जैसे गर्भ से बाहर निकले तो रोए नहीं, वो सबका मुंह देख रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, सबका मुंह देख करके परीक्षा कर रहे थे कि देखने की इच्छा होना। भक्ति अंदर भगवान को देखने की इच्छा होती है हमेशा, लेकिन वो देखने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हमारे प्रयास से भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है कि जो दर्शन दे। कोई नास्तिक है वो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, अगर भगवान को मान, अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तुम्हारे नौकर हैं क्या? क्या भगवान को कोई इससे कुछ घाटा होता है कि आप नहीं मानते भगवान को? ये भगवान आए तुम्हारे सामने, भाई मानो मुझको, देख लो मैं ये हूं, भगवान को क्या जरूरत है कि आपके पास आए? तो ये विधि नहीं है। भगवान को जो है प्रसन्न करने की विधि है उनके तरह का अनुभव करना। अच्छा, फिर इसमें और शब्द है अभितृप्त, अभितृप्त, अभितृप्त एव, अभितृप्त एव का मतलब क्या है? मानो असंतुष्ट हो, मानो असंतुष्ट हो, इस तरह से जो है मतलब असंतुष्ट नहीं है लेकिन असंतुष्ट मानो, जैसे असंतुष्ट जैसे। तो भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जिसने भगवान का दर्शन किया तो तृप्त हो जाता है, फिर भी अतृप्त भी कहा जाता है, अतृप्त है। केवल एक कारण से तृप्त है, बाकी और कोई कारण नहीं है, बाकी सब कारणों से तृप्त होता है। मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती, भौतिक इच्छाएं नहीं होती, इसलिए तृप्त भी कहा जाता है उसको। लेकिन एक कारण से अतृप्त होता है, वो क्या है? भगवान का दर्शन, उसमें तृप्त नहीं होता कभी। कृष्ण कथा में तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन वो तृप्त होते हैं, और हर दृष्टि से वो तृप्त होते हैं, क्योंकि उनकी और भौतिक इच्छाएं कोई नहीं रहती, इसलिए उसको तृप्त भी कहा जाता है। आत्मन ये वजह संतुष्ट तस्य कार्य न वृत्ति, गीता में भगवान कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्ट। तो वैसे वो बालक है, वो तृप्त है, क्योंकि उसको कोई कमी नहीं है उसको, उसने भगवान का दर्शन किया तब उसको कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, वो हर तरह से तृप्त है। वो नहीं सोचता है बालक कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके शरीर में कुछ कपड़े हैं और कुछ कपड़े भी नहीं, अलग से कुछ कपड़े भी उसने नहीं रखे है ना, उसके पास कुछ भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन तो भी वो तृप्त है। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि कोई व्यक्ति और कुछ उसकी कामना हो और वो पूरी हो जाए तो वो तृप्त हो जाए, नहीं, और कामनाएं होती हैं उसके अंदर, और कामनाएं होती हैं। लेकिन भगवान की जो है ना, जो कामना करता है तो वो फिर तृप्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर और कोई कामनाएं नहीं रहती, इसलिए तृप्त भी कहा जाता है और अतृप्त भी कहा जाता है। अतृप्त इसलिए कि वो जो है भगवान की कामना और करता रहता है, वो कामना उसकी समाप्त नहीं होती। जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई कामना नहीं रहेगी, तो वो तो गलत है, उसके अंदर कामना रहती है, उसके अंदर एक कामना रहती है, इसलिए वो तृप्त नहीं होता कभी। बाकी सब कामनाएं नहीं रहती हैं इसलिए वो तृप्त भी होता है, बाकी हर प्रकार से वो संतुष्ट है, एक प्रकार से असंतुष्ट रहता है। लेकिन जो भौतिक संसार में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति सोचता है कि ठीक है ये स्त्री मुझे मिल जाए मैं धन संतुष्ट हूं, लेकिन वो जो है संतुष्ट नहीं हो सकता। उस स्त्री के जो ना मिलने से उसकी और कामनाएं बढ़ जाती हैं, उसकी और आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो सकता। गीता में भगवान कहते हैं बहुशाखा हिनंताश्च बुद्ध योग्य विषायिनाम, बहुत शाखाओं वाली फिर बुद्धियां हो जाती हैं। एक कामना को पूरी करते हैं तो पचासों कामनाएं हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं आशा पांच सत्यर बद्धा काम क्रोध परायणा, सैकड़ों आशाओं के बंधनों से बंधे हुए प्रलयांताम उपासिता है ना, चिंताम परमेयाम च प्रलयांताम उपासिता, मृत्यु पर्यंत अनेक चिंताओं से भरे रहते हैं। लेकिन हां ऐसे गीत बनाए जाते हैं, भगवान कोई कल्पना नहीं है। जो मायावादी हैं उनके अंदर इच्छा नहीं होती भगवान को देखने की, क्योंकि वो भगवान को एक कल्पना समझते हैं। दृक्षु का मतलब है कि देखने की इच्छा है। अच्छा, और दृक्षु, और फिर कहा है ना अपश्यम, ना अपश्यम नहीं देख पाया, इससे क्या पता चलता है ना अपश्यम नहीं देख सका। हाँ प्रभु, हाँ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि हम भगवान को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हमारे ऊपर नहीं है, है ना। और भगवान की इच्छा बिल्कुल स्वतंत्र है, यद्यपि वो अपने अनन्य भक्तों के बस में है लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र भी है साथ साथ। इसका प्रमाण राधा रानी को भी छोड़ देते हैं, हरिबोल राधा रानी को भी छोड़ देते हैं भगवान, फिर किसकी बात कही जाए, किसकी बात कही जाए कि किसको वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन अनन्य भक्ति का यही मतलब है कि वो मुझे दर्शन दें या दर्शन ना दें, लेकिन वो क्या है, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों के नाथ वही हैं। हम भगवान को कोई शर्त में नहीं बांध सकते कि नहीं मैं आपका भक्त हूं तो आप मुझे दर्शन दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, ये नहीं हो सकता है। उनकी इच्छा है ना पश्यम, और फिर अभितृप्त, ये जो शब्द है इससे क्या पता चलता है, अभितृप्त का मतलब है असंतुष्ट, और एव का मतलब जैसे, असंतुष्ट नहीं है, कई मामलों में वो असंतुष्ट नहीं है, कई मामलों में संतुष्ट है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, वो जहां भी हैं जैसे भी हैं वो संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट असंतुष्ट एक मामले में है, किस मामले में, कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो केवल यही, इसको कहते हैं एकांत की भक्ति, एकमात्र। उस भौतिक संसार में कैसा होता है, नहीं होता इस भौतिक संसार में नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो बस मैं और कोई कामना नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है? लेकिन कहता है व्यक्ति, सोचता है कि हाँ बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, बस फिर मेरी कोई कामना नहीं, मुझे घर मिल जाए बस फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे कार मिल जाए तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता है लेकिन नहीं। गीता में भगवान ने क्या कहा इसके बारे में, बहुशाखा अनंतास्य व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हैं कुरुनंदन, अगर इधर आप मुड़े तो इधर आपकी एक ही मतलब निश्चय का बुद्धि रहेगी, एक ही निश्चय रहेगा कि बस यही मुझे इन्हीं की सेवा करनी, इन्हीं को ही प्राप्त करना है, इन्हीं से प्रेम करना है, और कोई मोड़ नहीं है। लेकिन अगर इधर आप मुड़े तो एक दिशा में आप नहीं चल सकते, एक दिशा में नहीं चल सकते, बहु शाखा अनंताश्च, जैसे पेड़ की कई शाखाएं होती हैं और शाखाओं की उपशाखाएं उनकी प्रशाखाएं अनंत हो जाती हैं, फिर गिन नहीं सकते। उसी प्रकार से चारों तरफ भाग दौड़ करना है। ये इंद्रिय इधर खींचती है, वो इंद्रिय इधर खींचती है, पांचों इंद्रियां उसको पांचों प्रकार के विषयों में खींचती हैं। जैसे एक पुरुष की पांच स्त्रियां हो तो वो उसको इधर खींचे, वो खींचे, वो बेचारा परेशान क्या करे, पांच पांच जो है ना स्त्रियां उसको खींच रही हैं। तो इस प्रकार से जो है ना वो परेशान रहता है। वो फिर ये नहीं हो सकता कि नहीं नहीं मैं एक ही इंद्रिय की सेवा करूंगा बस, बाकी इंद्रियों की सेवा नहीं करूंगा, नहीं, पांचों इंद्रियां जो है ना उसको खींचती हैं, परेशान रहेगा, बहुत परेशान। इन भक्ति में संतुष्ट हर मामले में है, असंतुष्ट केवल एक मामले में है, और वो क्या है, भगवान की सेवा मेरे से नहीं हुई। जितनी भी सेवा करे भगवान की कम है, जितना भी दर्शन किया भगवान का वो कम है, उसकी आंखें हमेशा अतृप्त रहती हैं भगवान के दर्शन में। तो यही अंतर है, जो भक्त है और जो मायावादी है उसमें यही अंतर है। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं नहीं मैं तो जो ना भगवान का दर्शन करता हूं, मुझे तो भगवान के हमेशा दर्शन होते हैं, वो कैसा है, वो कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, उच्च नहीं है, उच्च स्तर की भक्ति नहीं है। और उपासना की जो रमणीय विधि, आनंद देने वाली जो विधि है, वो किसने सिखाई है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार की है। इन किसने सिखाई है, किसने बनाई है, ब्रजवधू वर्गेण, रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। ब्रजवधुओं ने जो है ना उपासना की जो रमणीय विधि है, आनंद देने वाली विधि है, वो उन्होंने बनाई है। उनके चरण चरणों पर चैतन्य महाप्रभु चले। राधा रानी ने जो कृष्ण के विरह का अनुभव किया, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अनुभव करते हैं कृष्ण के विरह का। हैं? माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे जब मृत्युशैया पर थे, तो रामचंद्रपुरी ने कहा, हैं? क्या कहा, कि अरे आप तो ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, हैं? आप हरिबोल हरिबोल, ये हृदय ही मथुरा है और इसी में ही ब्रह्म विराजमान है, और आप ही ब्रह्म हो, फिर किसके विरह का अनुभव कर रहे हो। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या कहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से, तेरा मुंह देखूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि वो केवल मोक्ष है, नरक के समान है, केवल मोक्ष नरक के समान है। तो केवल मोक्ष की जो है प्राप्ति, भाई मैं ही ब्रह्म हूं बस, है? कोई विरह नहीं है भगवान का, वो भक्तों के लिए नरक के समान है। तो उनका तेरा मुंह देखूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, तू मेरे आंखों के सामने से चला जा। ईश्वरपुरी जो थे वो माधवेंद्रपुरी की भावनाओं का आदर करते थे, आदर करते थे और उनकी सेवा करते रहे। तो उनको जो है माधवेंद्रपुरी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो है तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त होगा, जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनके शिष्य बने। और चैतन्य महाप्रभु भी जब विरह का अनुभव करते थे जगन्नाथपुरी में, तो दो लोग उनके साथ थे केवल, कौन, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जो कि उनकी विरह की भावनाओं को समझ करके और उसी के अनुसार वो कविताएं सुनाते थे, गीत गोविंद की कविताएं सुनाते थे उनके भाव को पुष्ट करने के लिए। ये नहीं खंडन करना नहीं, चैतन्य महाप्रभु जिस समय जिस भाव में होते, विरह के भी कई कई प्रकार के भाव होते हैं, उनमें जैसी जैसी अनुभूतियां चैतन्य महाप्रभु करते हैं, तो विद्यापति के गीत या चंडीदास के गीत या गीत गोविंद के जो पद हैं वो गा करके वो सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु के उस भाव को पुष्ट करने के लिए। किसी प्रकार का रसाभास ना हो, तो दो ही लोग जो है ना चैतन्य महाप्रभु के साथ होते, जैसे राधा रानी के साथ में ललिता विशाखा रहती हैं, तो ललिता विशाखा जो स्वरूप दामोदर हैं वो क्या है, विशाखा, और रामानंद राय ललिता है। तो ये ललिता विशाखा जैसे राधा रानी के साथ रहती हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जब राधा भाव में है तो ये ललिता विशाखा ही जो है ना रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। उनके भाव को पुष्ट करने के लिए कृष्ण की उन लीलाओं का स्मरण कराते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जिससे उनका वो विरह भाव पुष्ट हो। हर कोई समझ नहीं सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हर व्यक्ति के सामने वो अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करते थे कि आंसू बहाएं। तो ये भी चीज है कि जो समझने वाला नहीं है तो जो भक्त लोग हैं वो इस ये चीजें दिखाते नहीं है। प्रभुपाद जी भी दिखाते नहीं थे, सामान्य जनता में प्रभुपाद जी ने कभी नहीं दिखलाया। उनके प्रवचन हैं, उनकी पुस्तकें हैं, वही सिद्धांत बताते हैं, वही शिक्षा बताते हैं कि हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, क्यों जाप करना चाहिए, आपको मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, यही बताते। पब्लिक में जो है ना ये सब चीजें नहीं दिखाते। कभी प्रभुपाद जी के आंखों से अश्रु बहते थे लेकिन रोक लेते थे, प्रभुपाद जी रोक लेते थे और आगे जो है ना वो प्रकट नहीं करते थे उनके जो भाव थे। लेकिन प्रभुपाद जी भी विरह में थे और बहुत विरह में थे, वो साक्षात भगवान के धाम से आए थे, तुमको कितना विरह सताता होगा, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि वो किस कार्य किससे आए हैं और कैसे लोगों के साथ कैसी बातें करनी चाहिए, इसलिए वो छिपाते थे, गुप्त रखते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है चर्चा करते थे अगर इस राधा भाव की तो केवल 3.5 लोगों के साथ उनके साथ केवल 3.5 लोग थे। कौन कौन थे? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिखी माहिती और उनकी जो बहन थी माधवी। हाँ माधवी, वो आधा माना गया, उसको आधा माना गया क्योंकि स्त्री हैं, इसलिए इसलिए 3.5 लोग ही थे केवल इसको समझने के लिए। खैर वो माधुर्य भाव था, ये जो बालक है ये विरह का अनुभव कर रहा है, ये शांत भाव में, नारद जी हैं वो शांत भाव में है। तो हर भाव में विरह का अनुभव होता है भक्त को, दास भाव में भी विरह का अनुभव करते हैं भक्त, सखा भाव में भी विरह का अनुभव करते हैं भक्त, अर्जुन है? जब कृष्ण से दूर होते हैं तो विरह का अनुभव करते हैं, उद्धव जी भी सखा हैं कृष्ण के, विरह का अनुभव करते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि माधुर्य भाव में ही विरह का अनुभव हो, प्रत्येक भाव में विरह का अनुभव होता है। कोई प्रश्न किसी का? तो यहां पर है कि ना पश्यम अवितृप्त एवं आतुर रहा, आतुर में अत्यधिक संतप्त हो उठा, बहुत संतप्त हो उठा। तो ब्रह की जो है ना जो ज्वाला है तो वो प्रदीप्त हो गई, बहुत जल गई, जलने लगी। जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम को जो है इतना विरह हुआ सीता का, इतना ज्यादा विरह हुआ कि उनके शरीर से आग निकलने लगी, वो भभक उठी, जैसे मिट्टी का तेल में आग पकड़ लेती है ना तो भभकती है आग, कैसे उनके शरीर से आग भभकने लगी। उस समय बानरों के बीच में थे भगवान और उनको सूचना मिली कि इंद्रजीत ने सीता जी का गला काट दिया, वो माया की सीता थी, इंद्रजीत जो है माया की सीता लेकर के रथ में आ गया और हनुमान जी और भी जो बानर थे वो युद्ध कर रहे थे, वहां पर भगवान राम नहीं थे, राम का युद्ध दूसरे द्वार पर हो रहा था, पर एक और द्वार था वहां से जो ना वो निकल करके आया तो बानरों की दूसरी सेना हनुमान जी के साथ थी जो उस द्वार पर थी, तो उस द्वार पर जो है उसने माया की सीता बना करके और दिखाया कि वो जो है ना उस सीता के जो ना बालों को पकड़ लिया उसने और सीता जो ना हाराम हाराम करके रो रही हैं और उसने वो पीटना शुरू किया सीता जी को। हनुमान जी जो ना बहुत दुखी हुए, बहुत गुस्सा हुए और कहते हैं कि तू उस अबला को क्यों पीट रहा है, उनको तो राज्य मिलना चाहिए, उनका राज्य भी चला गया और वो निर्दोष भी हैं तो उनको क्यों पीट रहा है। कहता है कि शत्रुओं को जिस प्रकार से कष्ट हो, दुख मिले, वही अपना कर्तव्य होता है। तुम जानते हो इस बात को, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। और फिर तलवार से सीता जी का सिर काट डाला। वैसे हनुमान जी को इतना गुस्सा आया कि वो इतना भारी जो ना पर्वत की शिला ला करके और ऐसा पटकते हैं उसके रथ के ऊपर कि शिला ही धंस जाती जमीन के अंदर, पूरी शिला जमीन के अंदर धंस गई। लेकिन उसने रथ को हटा लिया अपना, तो वो बच गया। फिर बाद में हनुमान जी जो है ये समाचार जो है राम को देने आते हैं, युद्ध बंद हो जाता है कि उसने हमारी आंखों के सामने सीता का सिर काट दिया, अब क्या करना है, अब युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आप निर्णय करो। तो ये बात सुन करके भगवान राम जो है ना मूर्छित हो जाते हैं, उनके सिर से आग भभकती है, वियोग की अग्नि। ऐसे कहा जाता है वियोग की अग्नि होती कैसी है, लेकिन इतनी ज्यादा वियोग की अग्नि थी कि राम का शरीर जल रहा था आग से। उसमें हनुमान आदि जितने बंदर हैं वो सब क्या करते हैं, समुद्र का पानी लाते हैं, समुद्र के पानी से जो ना उस आग को शांत करते हैं, तेजी से जलने लगे भगवान राम, पूरा शरीर जलने लगा। बाद में फिर विभीषण ने उनको समझाया कि नहीं नहीं वो असली सीता हो ही नहीं सकती, असली सीता जो है ना रावण की सुरक्षा में है, और इतनी सुरक्षा है कि उनको लाने के बाद क्या कोई देख नहीं सकता सीता को, केवल राक्षसियों के द्वारा घिरी हुए, कोई पुरुष जो है ना देख नहीं सकता रावण की जो है ना वो सुरक्षा में सीता है, पुरुष राक्षस देख भी नहीं सकता सीता को, राक्षसियां ही हैं जो देखती हैं या उनको समझाती हैं, डांटती हैं और किसी प्रकार से जो है धमकी देते हैं सीता जी को, स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में ये हो नहीं सकता है कि इंद्र जो है सीता को देख सके, वो नहीं देख सकता सीता को, माया की सीता है। जब भगवान राम ने ये सुना तब उनको चैन हुआ, तब फिर वो आगे युद्ध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Ram Ram Hare Hare